हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 1-9। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तरालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। न कामयिनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मत् चरणाम्भुजासव महत्तमन्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वर। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धिया चेतश्च न स्मार्ति तच्चरणारविन्द। कृष्णाय नो नमति यच्चिरैकदापि तानान्नयत्वमसतो अकृतवीष्णुकृत्या। तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलमोहसा महत्तामपि कौरव्य विद्यैकान्तिकनिष्कृतं। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवलखिशो। जय गोपी चित छोर प्रभु। जय जय माखन छोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री गुरु गौरंग जयतः। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 10 जिसका शीर्षक है सृष्टि के विभाग। विदुर जी जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान किया, उनको अपनी कृपा दृष्टि में रहने सदैव रहने का आश्वस्त किया, तो फिर वो भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। और फिर उसके उपरांत विदुर जी पूछते हैं कि भगवान के जाने के बाद ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से संसार की सृष्टि की। विदुर उवाच अंतरहिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामह प्रजा ससर्ज गति था दैहिकीर्मानसीर्विभु अंतरहिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामह प्रजा ससर्ज गति था दैहिकीर्मानसीर्विभु। विदुर उवाच, विदुर जी ने कहा, अंतरहिते भगवती, अंतरहिते मतलब अंतर ध्यान होने पर भगवती यानी भगवान के, ब्रह्मा लोक पितामह, ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी प्रथम उत्पन्न प्राणी, लोक पितामह जो कि समस्त लोकवासियों के दादाजी हैं, प्रजा ससर्ज कतिधा, प्रजा यानी संतानों, संताने ससर्ज उत्पन्न किया, कतिधा यानी कितनी, दैहिक की अर्थात अपने शरीर से, मानसी यानी अपने मन से, विभू यानी महान। अनुवाद, श्री विदुर जी ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे बताइए कि लोकवासियों के पिता महाब्रह्मा ने अंतर ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा ने अंतर ध्यान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। यानी उस समय अभी तक मैथुनी सृष्टि, क्योंकि अकेले ब्रह्मा जी थे ना, उनकी पत्नी तो थी नहीं, तो फिर वो अकेले ही सृष्टि करने वाले थे। तो बताओ, उन्होंने तो अपने शरीर से, अपने मन से कितना से किस किस जीव को उत्पन्न किया, वो मुझे बताइए। आगे पूछते हैं, ये च मे भगवन् पृष्ठा त्वय्यार्था बहुवेत्तम तान्वद स्वानुपूर्येण छिन्धिनः सर्वसंशयान्। ये च मे भगवन् पृष्ठा त्वय्यार्था बहुवेत्तम तान्वेदस्वानुपूर्येण छिन्दिनः सर्वसंशयान्। ये च मे भगवन् पृष्ठा, ये यानी ये वे सभी, च भी मे मेरे द्वारा, भगवन् हे शक्तिशाली पृष्ठा पूछे गए कि मैंने तो आपसे ये सारी बातें पूछी थी ना पहले से ही, त्वई यानी तुम, आपसे या तुमसे, यर्था प्रयोजन बहुवित्तम, हे परम विद्वान, आप तो सब जानते हो ना, मैं आपसे जो कुछ मैंने आपसे पूछा था, तान वदस वानुपूर्वेण, तान माने उन सबों को, वदस व कृपा करे वर्णन करिए, आनुपूर्ण यानी आदि से अंत तक, वो सब बताओ कि किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, जगत की रचना कैसे हुई और लोकों की रचना कैसे हुई, वो मुझे तान वदस यानुपूर्ण छिन्दिनः संशयम्। छिन्दि अर्थात कृपया समूल नष्ट कीजिए न मेरे सर्व संशयम्, सारे संदेहों को, हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें, और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताइए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि विदुर ने मैत्री से सारे प्रासंगिक प्रश्न पूछे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मैत्रेय उनकी जिज्ञासाओं के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति हैं। क्योंकि मैत्रेय मुनि जो हैं वो क्या थे, बहुवित्तमा, बहुवित्तमा ना परम विद्वान थे, और विदुर जी जानते थे कि वो, उनको तो सब कुछ पता है, इसलिए वो सब बातों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैत्रेय उनकी जिज्ञासाओं के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति हैं। मनुष्य को अपने शिक्षक की योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए किसी अभिज्ञ व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। जब शिक्षक से ऐसे प्रश्नों का काल्पनिक उत्तर मिले तो यह समय का अपव्यय मात्र है। कि अक्सर ऐसा होता है ना, हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जिनको खुद पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो गुरु परंपरा से आते नहीं हैं, शास्त्र वास्त्र पढ़ते नहीं हैं, तो उनको पता ही नहीं होता, फिर वो ऐसा जवाब देंगे ना, सृष्टि की रचना कैसे हुई, अचानक से विस्फोट हो गया और फिर ये सृष्टि का रचना हो गया और बिग बैंग ये वो, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है ना वही वास्तविक तथ्य है। तो मैत्रेय मुनि क्योंकि सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, इसलिए वो सही उत्तर दे सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी भी ऐसे लोगों से शिक्षा नहीं लेनी चाहिए जिनको शास्त्र के विषय में कुछ पता नहीं हो। ऐसे लोग जो आपको उत्तर देंगे ना, वो काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा, और आपका टाइम वेस्ट करने वाले होंगे। श्री सूत उवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौशारवीर्मुनि प्रीत प्रत्य
इत्याह तान् प्रश्नान् रेतिस्थानथ भार्गव एवं संचोदितस्तेन क्षत्राकौशारवीर्मुनि प्रीतः प्रत्याह तान् प्रश्नान् रेतिस्थानथ भार्गव एवं संचोदितस्तेन एवं सूची ने कहा श्री सूत उवाच यानी श्री सूत गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार संशोधित प्रोत्साहित हुआ तेन उसके द्वारा क्षत्रा विदुर से कौशारिव अर्थात कुशार के पुत्र मुनि मुनि ने जब विदुर जी ने इस तरह से सूत गोस्वामी से कहा कि मैंने आपसे जो कुछ पूछा है आप कृपा करके मुझे सब कुछ बताइए और मैं बहुत इच्छुक हूँ आपसे सुनने का क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हो बहुमत तो सब कुछ जानने वाले हो तो उन्होंने जब इतना उनकी प्रशंसा सुनी तो प्रीत फिर प्रसन्न होकर याद रखिए जिससे हम श्रवण करते ना उनको प्रसन्न ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिनसे वो प्रसन्न हो और उनको ऐसा लगना भी चाहिए कि हम श्रवण करने के इच्छुक हैं वरना जब तक जिज्ञासा सामने वाले के अंदर नहीं होती है श्रवण करने वाले के अंदर नहीं होती है तब तक वक्ता के अंदर इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती है बताने की इसलिए यहाँ पर देखिए हम विदुर जी को कितनी इच्छा है ना ये सब जानने की कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हम क्या करें सृष्टि किसी तरह से भी हुई हो हमको क्या फर्क पड़ता है हमको तो बस भगवान की लीलाएं समझनी है वही अच्छा लगता है लेकिन भागवतम का प्रत्येक शब्द जो है वो हमारे उद्धार के लिए हमारे कल्याण के लिए है वो उसको श्रवण करने की इच्छा अवश्य होनी चाहिए कि हमको हर एक शब्द को समझना है हर एक शब्द को श्रवण करना है कि उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ तो क्या ये हमारी श्रवण की इच्छा देखकर भगवान जो है वो हम पर कृपा करते हैं तो विदुर जी को कितनी इच्छा है कि वो प्रत्येक टॉपिक को सुनना चाहते हैं तो इसके कारण सूत गोस्वामी प्रीत प्रत्याह प्रीत मतलब बहुत प्रसन्न होकर प्रत्याह यानी उत्तर दिया तान प्रश्नान तान मना उनके प्रश्नान यानी प्रश्नों के हृदय स्थान अथ भार्गव हृदय स्थान अपने हृदय के भीतर से अथ इस प्रकार भार्गव हे प्रगोमिनी और जब वक्ता प्रसन्न होता है ना तो जो बात हो बताता है तो वो केवल मुख से नहीं होती है फिर वो हृदय से क्योंकि हृदय में भगवान का वास होता है और जब श्रोता के अंदर जिज्ञासा होती है तो कभी कभी वक्ता के मुख से वो भी निकल जाता है जो उसे कुछ खुद भी पता नहीं होता क्योंकि जब कोई शिक्षा देता है मतलब वो जब व्यास पे बैठता है तो फिर वो सिर्फ अपने मुख से नहीं बोल रहा होता है पूरी जो हमारी परंपरा है उसका आशीर्वाद होता है और गुरु महाराज का आशीर्वाद होता है और भगवान तो वैसे भी जो उनका नाम जप करते हैं उनको बुद्धि योग प्रदान करते हैं कभी कभी हम खुद अपने लेक्चर सुन के हैरान होते हैं कि ये बात मुझे तो खुद पता नहीं थी बस भगवान ना जाने किस तरह से शब्द मुख से निकलते हैं किस तरह से एग्जाम्पल्स निकलती हैं और ये तभी होता है जब एक पूर्ण शिष्य सामने होता है क्योंकि आजकल श्रवण करने वालों के अंदर प्योरिटी नहीं है तो सुनाने वाला भले प्योर हो भी उच्चा भी करता हो लेकिन वो देख रहा होता है कि सुनने वालों के अंदर कोई जिज्ञासा नहीं कोई उत्कंठा नहीं कोई उत्साह नहीं तो फिर वक्ता के हृदय से शब्द नहीं निकलते लेकिन यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जब विदुर जी के हृदय के अंदर इतनी प्योरिटी इतनी सिंसियरिटी और श्रद्धा के साथ श्रवण करने की इच्छा देखी तो क्या हुआ प्रीत प्रत्याह तान प्रेष्णान हृदय स्थान अथ भार्गव सूत गोस्वामी ने कहा हे भृगुपुत्र महर्षि मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए हर वस्तु उनके हृदय में थी अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, वाक्यांश यह सूचित करता प्रतीत होता है कि मानो महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच चल रही वार्ता में भंग हुआ हो। जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बोल रहे थे तो सूत गोस्वामी तमाम दर्शकों में से एक थे, किंतु सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के मुनियों से बातें कर रहे थे जिनमें सुखदेव गोस्वामी के वंशज शौनक मुख्य थे। पर इससे विवेचनगत कथाओं में विशेष अंतर नहीं आता। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ पर जब सूत उवाच लिखा होता है तब हमको लगता है कि कथा तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, और जब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं तो सूत उवाच कहाँ से आ गए, यहाँ पर तो श्री शुक उवाच होना चाहिए। भागवत तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम प्रसंग पढ़ रहे हैं वो तीसरे नंबर का प्रसंग पढ़ रहे हैं। देखो, हमने शुरू में जो कथा स्टार्ट की थी ना, पहले स्कंद में, वहाँ पर सूत गोस्वामी को 88,000 ऋषि जो बैठे हुए थे और शौनक मुनि प्रश्न कर रहे थे, हम वहाँ से प्रारंभ किए। और फिर शौनक मुनि जो हैं वो जो प्रश्न करते हैं उनके उत्तर में सूत गोस्वामी कहते हैं, मैं आपको वो कथा बता रहा हूँ जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। और सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो कथा बता रहे हैं जो कि मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाई थी। तो इस तरह से सूत गोस्वामी सोनिक ऋषियों को बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। लेकिन यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पर इससे विवेचनागत कथाओं में विशेष अंतर नहीं आता। बात वही हो रही है, सिर्फ अलग अलग मुखों के द्वारा वो सुनाया जा रहा है। मैत्रेय उवाच वीरंचोपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तप आत्मन्यात्मानमावेश यथाः भगवान् न च वीरंचोपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तप आत्मन्यात्मानमावेश यथाः भगवान् न च। मैत्रेय उवाच, यानी मैत्रेय मुनि ने कहा, विरंच च, विरंची जो है वो ब्रह्मा जी का नाम है, ब्रह्मा जी को कहते हैं। अपि तथा चक्रे, अपि मना भी, तथा मना उस तरह से, चक्रे मना संपन्न किया, देव्यम, देव्यम यानी स्वार्गिक, वर्ष शतम 100 वर्ष तपस्या। ब्रह्मा जी ने 100 स्वर्गिक वर्ष जो है वो तपस्या में बिताए, और उसके उपरांत आत्मन यात्मनात्मावेश, आत्मनी यानी भगवान की, आत्मनम यानी अपने आप, आवेश यानी संलग्न रहकर, यथा आह मन जैसा कहा गया था, भगवान यानी भगवान, अज यानी अजन्मा, और उसके उपरांत जैसा भगवान अजन्मा ने, यानी वो भगवान जिनका कभी जन्म नहीं होता, उनको जैसा आदेश दिया वैसा उन्होंने किया। अनुवाद। परम विद्वान मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्ष तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले कितनी बार तपस्या की है। पहले तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रकट करने के लिए कितना समय तक तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, उनकी कितनी सुंदर स्तुति की, और उसके उपरांत पुनः बताया जा रहा है कि 100 स्वर्गिक वर्ष, यानी जो देवताओं के वर्ष होते हैं, 100 दिव्य स्वर्गिक वर्षों तक उन्होंने पुनः तपस्या की, और उसके उपरांत तपस्या में संलग्न रखा,
और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए रखा। जब हमको भगवान के किसी आदेश का पालन करना होता है, यदि हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से उसको करें, भगवान की कोई भी सेवा, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तपस्या और भक्ति की आवश्यकता होती है। फिर जब हमारे अंदर प्योरिटी होती है, सिंसियरिटी होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, और तपस्या के साथ जब हम श्रद्धा के साथ कार्य करने लगते हैं ना, तो सारा कार्य भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से होने लगता है। इसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ब्रह्मा ने भगवान नारायण के हेतु अपने आप को संलग्न रखा, यानी बस भगवान को प्रसन्न करना है लक्ष्य बना दिया। इसका यह अर्थ है कि उन्होंने भगवान की सेवा में अपने को लगाए रखा। यही वह सर्वोच्च तपस्या है जो कितने ही वर्षों तक की जा सकती है। बस एक बार भगवान से प्रेम हो जाता है, फिर जीव जन्म जन्मांतर भगवान को प्रसन्न रखने के लिए तपस्या कर सकता है। ऐसी सेवा से कोई कभी निवृत्त नहीं होता, क्योंकि यह शाश्वत यथा सदैव उत्साहवर्धक होती है। ये सदैव उत्साह प्रदान करने वाली है। सदैव जो भगवान के साथ प्रेम करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो सदैव अपने जीवन को तपस्या में ही रखते हैं, और उससे कभी ऐसा नहीं सोचते कि बस अभी मैंने बस थक गया हूँ, अभी मैं श्रवण नहीं करना चाहता, आज बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा है, मैं नाम जप नहीं करना चाहता, आज मैं मंगला नहीं करना चाहता। उनको तो बल्कि ऐसा उत्साह होता है, नहीं मुझे करना है, मुझे इसमें बहुत आनंद आता है। जितना जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उतना जितना भक्ति के कार्यों में हमें आनंद आने लगता है। और कभी भी कोई भक्त ऐसे नहीं सोचता कि यार इस तरह से सुबह सुबह उठना पड़ता है, नाम जप करना पड़ता है, रोज़ रोज़ इतना सब, इससे बेहतर है ना कभी आराम नहीं मिलता हमको। आराम मिलना चाहिए, भक्तों को भी थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। रोज़ रोज़ सोलह माला करो, रोज़ रोज़ अनमंगला पे उठो, संध्या पे उठो, भगवान की सेवा करो, प्रसाद बनाओ, थक जाते नहीं, उसी में उनको रस मिलता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भगवान की भक्ति ऐसी तपस्या है जो कितने ही वर्षों तक की जा सकती है। ऐसी सेवा से कोई कभी निवृत्त नहीं होता, और क्योंकि यह शाश्वत तथा सदैव उत्साहवर्धक है। जितना जितना भगवान के निकट जाते जाएंगे, उतना उतना उनकी सेवा में आनंद आता जाता है। आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, तद्विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यदधिष्ठिता पद्मंभश्च तत्काल कृतवीरेण कंपितम् तद्विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यदधिष्ठिता पद्मंभश्च तत्काल कृतवीरेण कंपित तद्विलोक्य उसके भीतर देखकर अब्ज संभूत कमल से उत्पन्न वायुना वायु द्वारा यत जो अधिधिष्ठिता अर्थात जिस पर वह स्थित था, पद्म यानी कमल, अम्ब यानी जल। तो जिस तरह से भगवान ब्रह्मा जी भगवान की तपस्या कर रहे थे 100 साल तक, और वो जैसे उन्होंने एक दिन क्या देखा कि जिस जल में वो कमल है जिस पर वो बैठे हुए हैं, वहाँ पर बहुत तेज वायु आ रही है। बहुत वायु ना अधिधिष्ठिता, वायु ना का मतलब बहुत तेज वायु आ रही थी, और अधिधिष्ठिता जिस पर वह स्थित था, पद्म यानी कमल, अम्ब यानी जल, च भी तत्कालकृत जो नित्य काल द्वारा प्रभावित था। अब क्या होने लगा कि उस पर काल का प्रभाव होने लगा, वीरेण अपनी निहित शक्ति से कंपितम और वो कांपने लगा। अनुवाद, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा हुआ था प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे थे। तो इतने 100 वर्षों तक जब वो तपस्या कर रहे थे सब शांत था, लेकिन अचानक से तीस वायु के प्रचंड वायु के कारण वो जल और वो कमल जो है वो कांप रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत मोहमयी कहलाता है क्योंकि यह भगवान की दिव्य सेवा की विस्मृति का स्थान है। इस तरह इस भौतिक जगत में भगवत भक्ति में संलग्न व्यक्ति कभी कभी विषम परिस्थितियों से अत्यधिक विचलित हो सकता है। माया शक्ति तथा भक्त इन दो पक्षों के बीच युद्ध की घोषणा हुई रहती है और कभी कभी दुर्बल भक्त पक्ष सबल माया शक्ति के प्रतिघात की चपेट में आ जाता है, किंतु भगवान की हेतु की कृपावश ब्रह्मा जी अत्यंत प्रबल थे और माया शक्ति उन्हें अपना शिकार नहीं बना सकी। यद्यपि यह उनकी चिंता का कारण तब बनी जब यह उनके पद को लड़खड़ाने में समर्थ हुई। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते जब आप भक्ति करने बैठते हो ना तो ये मत सोचो कि सारा वातावरण जो है वो आपकी सहायता करेगा। वो जो माया है वो उसने तो भक्त को उसकी भक्ति से गिराने का एक निश्चय कर लिया है। और ये भौतिक जगत को मोहमय इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको भगवान से दूर करती हैं। लेकिन यदि भक्त का संकल्प दृढ़ है और उसका विश्वास पक्का है, जैसे ब्रह्मा जी हैं उनका संकल्प दृढ़ है कि उनको भगवान की सेवा करनी है और विश्वास पक्का है कि भगवान अवश्य सहायता करेंगे, फिर ये माया शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि वो सशक्त हैं। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्रह्मा जी अत्यंत प्रबल थे और माया शक्ति उन्हें अपना शिकार नहीं बना सकी। यद्यपि यह उनकी चिंता का कारण तब बनी क्योंकि अब तो उनको लगा कि क्या करूं, क्योंकि ये जल में इतनी तेज वायु आ रही है और मेरा जो ये घर है जिस पर मैं बैठा हुआ वो भी हिल रहा है, कहीं मेरा ये घर जो है वो बिल्डोजर ये हवा का जो है उसको गिरा ना दे। तो ये चिंता का कारण तब बनी जब यह उनके पद को लड़खड़ाने में समर्थ हो गए। आगे कहते हैं तपस्या खेधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद्वायुं सहांबसा तपस्या येधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद्वायुं सहांबसा। तपस्या येधमानेन, तपस्या अर्थात तपस्या से ही यानी निश्चय ही एधमानेन बढ़ते हुए विद्यया चात्म संस्थया विद्यया यानी दिव्य ज्ञान द्वारा च भी आत्म यानी आत्मा संस्थया यानी आत्म स्थित विवृद्ध ज्ञान बलो विवृद्ध यानी परिपक्व विज्ञान अर्थात व्यावहारिक ज्ञान बल यानी शक्ति न्यपात यानी पी लिया वायु वायु को स अम्बसा यानी जल के सहित। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी की तपस्या इतनी कठिन थी इतनी परिपक्व थी कि उन्होंने वो जो वायु तेज तेज जल रही थी जो कि प्रचंड थी और उसके घर को हिला रही थी उस वायु को भी पी गए और जल भी पी गए। सारा जो जल हिल रहा था ना उसके ब्रह्मा जी के कमल को हिला रहा था। तो अनुवाद देखिए, दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यावहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था, अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ ही पी लिया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अस्तित्व के लिए
ब्रह्मा जी का संघर्ष उस निरंतर युद्ध का निजी उदाहरण प्रस्तुत करता है जो इस भौतिक जगत में जीवों तथा मोहनी शक्ति माया में चलता रहता है। अब यहाँ ब्रह्मा जी बेचारे अकेले, एक तो इतना बड़ा भगवान ने उनके ऊपर कार्य दिया था, और फिर अभी ब्रह्मा जी को ये जो माया वाली वायु है वो डिस्टर्ब कर रही थी। तो इस संसार में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमको भी कोई ना कोई बहुत सारे कर्तव्य निभाने होते हैं और मोहमयी माया जो है वो हमको विचलित करती है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अस्तित्व के लिए ब्रह्मा जी का संघर्ष उस निरंतर युद्ध का निजी उदाहरण प्रस्तुत होता है जो इस भौतिक जगत में जीवों तथा मोहनी शक्ति में माया में चलता रहता है। भौतिक जगत में भी हम सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, लेकिन मोहमय माया रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। तो ब्रह्मा से लेकर आज तक सारे जीव भौतिक प्रकृति की सेनाओं से संघर्ष करते रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही हो रहा है, हर एक जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और हम सब संघर्ष करने के लिए ही हैं, हमको इस संघर्ष में विजयी होना ही है। विज्ञान तथा दिव्य अनुभूति में प्रगति ज्ञान के कारण मनुष्य इस उस भौतिक शक्ति पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर सकता है। जो दो चीजें, एक विज्ञान यानी प्रैक्टिकली हम कितना भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, तथा दिव्य अनुभूति में प्रगत, दिव्य अनुभूति के जब हम अपने आप को रियल, अपने आप की रियलिटी को समझते हैं, आध्यात्मिकता को जानते हैं, एक तो भगवान पर विश्वास होना चाहिए और दूसरा हम अपनी इस स्थिति को जानते हैं कि हम दिव्य हैं, ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि हम मायापति के शरण में हैं। तो इस दिव्य अनुभूति के प्रगत ज्ञान के कारण मनुष्य उस भौतिक शक्ति पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर सकता है जो हमारे प्रयासों के विरुद्ध कार्यशील रहती है। और आधुनिक युग में तो प्रगत भौतिक वैज्ञानिक ज्ञान तथा तपस्या ने भौतिक शक्ति को नियंत्रित करने में अद्भुत भूमिका निभाई है, किंतु भौतिक शक्ति पर ऐसा नियंत्रण तभी सफल हो सकता है जब मनुष्य भगवान के शरणागत हो। दिव्य प्रेमा भक्ति के अभाव से उनके आदेश का पालन करें। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इस संसार में आजकल क्या है कि वैज्ञानिक ज्ञान, भौतिक विज्ञान, साइंटिस्ट जो हैं वो माया पर, माया के प्रभाव को रोकने की कोशिश करते हैं। भौतिक वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा या भौतिक शक्तियों के द्वारा माया को हम परास्त नहीं कर सकते। माया तो भगवान की शक्ति है और भगवान ने कहा, वैसे तो इस माया को पार करना बहुत कठिन है, परंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्तिते। तो ये ब्रह्मा जी कोई वैज्ञानिक तरीके से माया को परास्त नहीं कर रहे थे, बल्कि क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान की शरण में हैं, इसीलिए वो माया के प्रभाव को रोक सके। आगे कहते हैं, तद्विलोक्य व्यद्व्यापी पुष्करं यदधिष्ठितं अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीत्यचिन्तयन् तद्विलोक्य वियद्व्यापि पुष्करं यदधिष्ठितं अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीत्य चिन्तयन् तद्विलोक्य वियद्व्यापी। तद्विलोक्य उससे देखकर, वियद्व्यापी यानी अतीव विस्तृत, पुष्करम यानी कमल, यत जो अधिदिष्ठम यानी स्थित था, अनेन इससे, लोकान सारे लोग, पाक ली नया यानी पहले प्रलय में मग्न, कल्पिता अस्मि
अर्थात मैं सृजन करूंगा इति इस प्रकार अचिंतयन यानी उसने सोचा। फिर जब सारा जल पी लिया और कमल स्थित हो गया तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ, तद विलोक्य वियद व्यापी, और यानी बहुत ही विस्तृत जो ये संसार है और ये जो कमल है उसके अंदर जिसमें वो ब्रह्मा जी स्थित थे, पुष्करम व्यधिधिष्ठितम, उस कमल से अनेन लोकान प्रागीलान, बहुत सारे लोक जो हैं उससे उनको प्रकट करने थे, जो कि कल्पिताम, जो वो सृजन करेंगे जो कि प्राकलीनला, जो पहले थे लेकिन प्रलय के समय जो है वो सब समाप्त हो गए थे। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मुझे अब अपना कार्य शुरू कर देना चाहिए, ये माया तो कभी भी आक्रमण कर सकती है। अनुवाद देखिए, तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वे आसीन थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है, और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त लोकों को किस तरह से उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व इसी कमल में लीन थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मांड के सारे लोगों के जीव के बीज उसी कमल में गर्भस्थ थे जिस पर ब्रह्मा जी आसीन थे। भगवान ने पहले से सारे लोगों को उत्पन्न कर रखा था और सारे जीव भी ब्रह्मा में जन्म ले चुके थे। भौतिक जगत तथा सारे जीव पहले से ही बीजाणु रूप में भगवान द्वारा उत्पन्न किए जा चुके थे। अब और ब्रह्मा को उन्हीं बीजों को ब्रह्मांड भर में बिखेरना था, इसलिए असली सृष्टि स्वर्ग कहलाती है और बाद में ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि की गई है वह भी स्वर्ग कहलाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जो वास्तविक क्रिएशन है वो तो भगवान के द्वारा हो गई थी, बीज जो थे सारे, यहाँ पर बताया कि ब्रह्मांड के सारे लोगों के बीज उसी कमल में गर्भस्थ थे। कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि वृक्ष पहले आया या बीज पहले आया, क्योंकि अगर वृक्ष पहले आया है तो बीज तो ज़रूरी है ना, क्योंकि बीज ही नहीं होगा तो फिर वृक्ष कैसे उत्पन्न होगा, और अगर पहले बीज आया तो बीज तो वृक्ष से उत्पन्न होता है, फिर वो कैसे आया। तो इसका उत्तर यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारे जो बीज है ना वो पहले आए, और बीज किसी वृक्ष से नहीं आए बल्कि बीज जो है वो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किए थे, और ये बीज ही स्वर्ग हैं, ये बीज जो है वो स्वर्ग हैं, जो ब्रह्मा जी के जो भगवान के द्वारा सृष्टि होती है उसको स्वर्ग कहते हैं, और जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि होती है उसको भी स्वर्ग कहते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी थे, भगवान ने पहले से सारे लोगों को उत्पन्न कर रखा था, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी को कुछ अपने से करना, ये सब ब्रह्मा जी की को सिर्फ श्रेय देने के लिए है, बाकी कार्य तो सब भगवान पहले से कर, और सारे जीव ब्रह्मा में जन्म ले चुके थे जो अभी जीव उत्पन्न होने वाले, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी नई आत्माओं को बनाएंगे, नहीं, वो पहले से ही उत्पन्न हैं, सिर्फ प्रलय के समय वो भगवान के अंदर स्थित हो गए थे। अब भौतिक जगत तथा सारे जीव पहले से ही बीजाणु रूप में भगवान द्वारा उत्पन्न किए जा चुके थे, और ब्रह्मा को उन्हें उन्हीं बीजों को ब्रह्मांड भर में बिखेरना था, उनके कर्मों के अनुसार जहाँ जहाँ भी उनको जन्म देना था वो कार्य करना था, और इसीलिए वास्तव में जो क्रिएटर हैं वो ब्रह्मा जी नहीं हैं, भगवान हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी भगवान ने बनाया और सारे जीवों के बीज भी ब्रह्मा जी को भगवान ने दिए। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, पद्मकोशं तदाविश्य भगवत कर्म चोदित एकं व्यभांक्षी दुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा। पद्मकोशं तदाविश्य भगवत कर्म चोदित
एकं व्यभाङ्क्षी दुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा। पद्मकोशम यानी कमल चक्र में जो पद्म था जिस पर वो बैठे हुए थे उसमें तदा विश्य, तदा मना तब, आविश्य यानी प्रवेश करके भगवत कर्म चोदिता, भगवत मना भगवान द्वारा कर्म यानी कार्यकलाप चोदिता अर्थात प्रोत्साहित किया गया। एकम व्यभांग क्षी दुरुधा, एकम यानी एक, व्यभांक्षित यानी विभाजित कर दिया, उरुधा अर्थात महान खंड, त्रिधा भाव्यम द्विसप्तदा, त्रिधा अर्थात तीन विभाग, भाव्यम अर्थात आगे सृजन करने में समर्थ, द्विसप्तदा 14 भवन। अब पहले तो उन्होंने क्या किया, तीन त्रिधा अर्थात तीन लोग, ऊपर के लोग, नीचे के लोग और मध्य के लोग, और उसी को बाद में क्या किया द्विसप्तदा, सप्तदा कहते हैं सेवन को, और द्वि मतलब सेवन प्लस सेवन यानी 14, पहले तीन को तीन में विभाजित किया, उसके बाद उनको 14 में विभाजित कर दिया। अनुवाद देखिए, इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी कमल के कोश में प्रविष्ट हो गए। पद्म कोशम तदा विश्य, पद्म कोश के अंदर वो प्रविष्ट हो गए, और कमल के कोश में प्रविष्ट होने के बाद चूंकि वह सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था अतः उन्होंने उसे ब्रह्मांड के तीन विभागों और उसके बाद 14 विभागों में बांट दिया, और उसके उपरांत क्या किया, एतावान् जीवलोकस्य संस्था भेद समाहृत धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाक परमेष्ठ्यसौ एतावान् जीवलोकस्य संस्था भेद समाहृत धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाक परमेष्ठ्यसौ एतावन् जीवलोकस्य अर्थात एतावन् अर्थात यहाँ तक, जीवलोकस्य यानी जीव द्वारा निवसित लोकों के संस्था भेद अर्थात निवास स्थान की विभिन्न स्थितियां। अब जो जो लोग, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो संसार की सृष्टि करनी थी और फिर उन्होंने हर एक जीवों के लिए निवास स्थान बनाए और निवास स्थान की विभिन्न स्थितियां, समाहृत पूरी तरह संपन्न धर्मस्य यानी धर्म का ही निश्चय ही, और सब धर्म के अनुसार सबको अपने अपने स्थान पर बिठाने के लिए पहले स्थान बनाया, निमित्तस्य अहि तुक्ता का विपाक परिपक्व अवस्था, परमेष्ठी अर्थात ब्रह्मांड में सर्वोच्च व्यक्ति असौ यानी उसने। अनुवाद, परिपक्व दिव्य ज्ञान में भगवान की अहितु की भक्ति के कारण ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष थे, उनसे एक ही तो थे, उनके अतिरिक्त तो और कोई अभी तक था ही नहीं, जीवात्माएं थी, तो क्योंकि वो भगवान की बहुत अहितु की भक्ति करते थे, उसके बदली में भगवान से कुछ चाहते नहीं थे, केवल भगवान की सेवा करना चाहते थे, इसलिए, और एक तो भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान भी प्रदान किया था, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं परमेश्वर जीवों के समस्त गुणों के आगार हैं। हमारे पास जो भी गुण हैं, जो भी क्वालिटीज हैं, उस सब का स्रोत भगवान है, भगवान से ही प्राप्त होते हैं। तो जो भी ज्ञान है, जो भी शक्ति है, जो भी सुंदरता है, जो भी धन है, वो सब भगवान की कृपा है वास्तव में। तो भौतिक जगत में बद्ध जीव उन गुणों के अंश मात्र की झलक देते हैं, इसलिए कभी कभी वे प्रतिबिंब कहलाते हैं। भौतिक जगत में जो भगवान का ज्ञान है, भगवान की सुंदरता है, जो भगवान का ऐश्वर्य है, वास्तव में बहुत ही थोड़ा है, आंशिक है, झलक मिलती है, बस ऐसा लगता है। अब देखो, संसार की जो सुंदरता है, संसार का जो वैभव है, वो हमको अट्रैक्ट करता है, लेकिन असल में वो वैभव है किसका? जो कुछ भी है वो भगवान का है। तो संसार में क्या है, उसका रिफ्लेक्शन है। इसीलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बद्ध जीव उन गुणों के अंश मात्र की झलक देते हैं। संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो झलक है, वास्तव में सारे जो गुण है वो भगवान के अंदर हैं, और इसलिए कभी कभी प्रतिबिंब कहलाते हैं। इन प्रतिबिंब जीवों ने परमेश्वर की भिन्नांशों के रूप में उनके आदि गुणों के विभिन्न अनुपातों को ही उत्तराधिकार में ग्रहण किया है। ये यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इन प्रतिबिंब जीवों ने, हम सब प्रतिबिंब हैं, हमारे अंदर जो क्वालिटी है वो भी एक रिफ्लेक्शन है भगवान का ही, वो वास्तव में भगवान का गुण है। परमेश्वर के भिन्नांशों के रूप में उनके आदि गुणों के भिन्न अनुपातों को ही उत्तराधिकार में ग्रहण किया है। ये सब भगवान के गुण हैं, लेकिन क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी वो गुण थोड़े थोड़े आते हैं। किसी के अंदर शक्ति है, किसी के अंदर बुद्धि है, किसी के अंदर सौंदर्य है, किसी के अंदर बल है, किसी के पास धन है। तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हमें हमारा उत्तराधिकारी होते हैं ना, कि भाई जैसा क्वालिटी पूर्ण में होती है वो उसके अंश में भी आ जाती है। और इन गुणों को ग्रहण करने के अनुसार ही वे विभिन्न जीव योनियों के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की योजना के अनुसार विभिन्न लोकों में स्थान पाते हैं। फिर हमारी जो जो क्वालिटीज होती हैं उनके अनुसार हमको शरीर प्राप्त होता है, और ब्रह्मा जी ने योजना क्या बनाई है कि जैसे जैसे जीव होंगे उसके अनुसार उनको वैसा लोक उनको बना के दिया। तो ब्रह्मा जी तीनों जगतों यानी पाताल लोक अर्थात अधोलोक, भूवर लोक अर्थात मध्यलोक, तथा स्वर्ग लोक अर्थात उच्चतर लोक, भूलोक, भूवर लोक और पाताल लोक, ये तीन इनके श्रेष्ठा हैं। पहले ये तीन बनाए, उनसे भी उच्चतर लोक तथा महरलोक, तपोलोक, सत्यलोक तथा ब्रह्मलोक प्रलय जल में विलीन नहीं होते हैं। अब जो प्रलय एक आंशिक प्रलय होता है, और आंशिक प्रलय में ये चार लोक जो यहाँ पर बताए गए हैं, कौन कौन से, महरलोक, तपोलोक, सत्यलोक तथा ब्रह्मलोक, ये विलीन नहीं होते हैं। मतलब प्रलय के टाइम पर प्रलय अलग अलग होती है, एक तो चार युगों के बाद कलयुग के बाद एक प्रलय होती है, और एक मनवंतर की जब 71 चतुर्युग के बीच जाती है तो एक बड़ी प्रलय होती है, और एक कल्प होता है जब ब्रह्मा जी का एक दिन जिसमें 1000 चतुर्युग यानी 14 मनु समाप्त हो जाते तो एक प्रलय होती है। तो ये जो ऊपर के लोक हैं वो हर दफा नष्ट नहीं होते, ब्रह्मलोक, तपोलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक ये प्रलय जल में विलीन नहीं होते। इसका कारण उन लोकों के निवासियों द्वारा की जाने वाली भगवान की अहितुकी भक्तिमय सेवा और इन निवासियों का अस्तित्व द्वीपरार्ध काल के अंत तक बना रहता है, जब वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु की श्रृंखला से सामान्य रूप में मुक्त कर दिए जाते हैं। तो इनका जो उनके पास समय बहुत होता है, क्योंकि वो भगवान की अहितु की भक्ति करते हैं, और इसलिए उनका अस्तित्व द्वीपरार्ध काल के अंत तक बना रहता है। मतलब जब तक ये सृष्टि रहती है ना, जब तक भगवान जो बड़ा सा प्रलय करते हैं, एक महाप्रलय होता है, तब तक उनकी जो है ना सृष्टि बनी रहती है। जब वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के श्रृंखला से सामान्य रूप से मुक्त कर दिए जाते, और जब महाप्रलय होता है तब जो ये ऊपर के लोकों के हैं जीव जो रहते हैं
उनको मुक्त कर दिया जाता है वो सब भगवत धाम में, क्योंकि वो सदैव भगवान की भक्ति करते हैं। अब ये जो महरलोक है, तपोलोक है, सत्यलोक है और ब्रह्मलोक है, वहाँ के जीव अपराध नहीं करते, वहाँ के जीव सदैव भगवत भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन उनके अंदर अभी तक वो पहले इतना मतलब भाव नहीं था भगवान के लिए, लेकिन यहाँ पर रहते रहते तपस्या करते 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 वो इस योग्य हो जाते हैं कि वो भगवान नाम में चले जाए। इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इन निवासियों का अस्तित्व द्विपरार्ध काल के अंत तक बना रहता है और फिर भौतिक जगत में जन्म मृत्यु की श्रृंखला से सामान्य रूप से वो मुक्त कर दिए जाते हैं। तो यहाँ तक ब्रह्मा जी ने 14 लोकों का निर्माण करने का निश्चय किया। उसके उपरांत विदुर जी एक और प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं यथा बहुरूपस्य हरिरद्भुतकर्मणा कालाख्यम लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयन प्रभो यथार्थ बहुरूपस्य हरिरद्भुतकर्मणा कालाख्यम लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयन प्रभो। विदुर उवाच, अर्थात विदुर जी ने कहा यथार्थ बहुरूपस्य, यथा यानी जिस तरह, अर्थ यानी आपने कहा, बहुरूपस्य भिन्न रूपों वाले हरि अद्भुत कर्मणा, हरि यानी भगवान, अद्भुत कर्मणा यानी जिनके कार्य बहुत विचित्र होते हैं, वो कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मन्, काल यानी समय, आख्यम यानी नामक, लक्षणम यानी लक्षण, ब्रह्मन् हे विद्वान ब्रह्मन्, यथा वर्णय न प्रभु, यथा यानी यह जैसा है, वर्णय कृपा करके वर्णन करें न हमसे प्रभु, हे प्रभु। क्योंकि अब सृष्टि की रचना करनी है तो सृष्टि की रचना में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण वस्तु है वो क्या है, काल है। तो ब्रह्मा जी ने विदुर जी जो हैं वो मैत्रेय मुनि से पूछते हैं। विदुर ने मैत्रेय से पूछा हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके नित्य काल का वर्णन करें जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। नित्य काल के क्या लक्षण हैं कृपा करके हमसे विस्तार में कहें। कि ये तो भगवान की अद्भुत शक्ति है, ये काल जो है वो काल चक्र जो है वो कभी समाप्त नहीं होता। ये भगवान यहाँ पर बताया यथार्थ बहुरूपस्य हरेर अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्म है ये नित्य जो काल है वो भगवान का, उसके विषय में आप मुझे बताइए। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं यह संपूर्ण ब्रह्मांड, अणुओं से लेकर विराट ब्रह्मांड तक के चित्र विचित्र जीवों का प्राकट्य है। ये ब्रह्मांड में अजीब अजीब बहुत सारे करोड़ों जीव हैं। 84 लाख तो खाली योनियां हैं, लेकिन क्वांटिटी तो एक एक योनी में कितनी सारी है। तो यह संपूर्ण अणुओं से लेकर विराट, यानी छोटी छोटी जर्म से लेकर बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े दिग्गज तक, ब्रह्मांड तक के चित्र विचित्र जीवों का प्राकट्य है। और यह सब परमेश्वर के काल रूप के नियंत्रण में है। और एक समय आता है जब प्रलय हो जाती है, काल आ जाता है, सबकी मृत्यु हो जाती है। तो नियंत्र काल विशिष्ट जीवधारियों के अनुसार विभिन्न विस्तारों वाला है ये जो नियंत्रित काल है। तो विशिष्ट जीवधारियों के अनुसार विभिन्न विस्तारों वाला है। किसी के लिए मृत्यु जो है वो 100 साल में आती है, और देखने वाले ब्रह्मा मनुष्य की आयु 100 साल है, और ब्रह्मा जी तो पलक झपकते ही देखते हैं कब प्रलय हो जाती है। तो अलग अलग लोकों के लिए, अलग अलग जीवों के लिए काल का अलग अलग मतलब होता है। नियंत्रित काल विशुद्ध जीव धारणा के अनुसार विभिन्न विस्तारों वाला होता है। परमाणु लय के लिए एक काल है, और
विश्व लय के लिए भी एक अलग काल है, मनुष्य के शरीर के लय का एक काल है और विश्व शरीर के लय का भी एक काल है। वृद्धि विकास तथा परिणाम कर्म से सभी ये सभी काल पर आश्रित हैं। विदुर विभिन्न भौतिक प्राकट्यों तथा उनके विलीन होने के कालों के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि काल नाम तो एक ही है लेकिन हर एक प्राणी के लिए अलग काल है। छोटे छोटे परमाणु लय के लिए एक छोटा सा काल है, परमाणु जीव तो जो जर्म्स होते हैं वो फौरन से मर जाते हैं, कोई कोई हम देखते कीड़े होते हैं, एक बारिश के कीड़े होते हैं जो बारिश वाले दिन आते हैं उसी दिन पैदा होते हैं, उसी दिन बच्चे होते हैं, उसी दिन रात को क्या होता है वो सब मर जाते हैं और सुबह को सब झाड़ू में निकल दिए, तो उनके लिए एक अलग काल है। विश्व लय के लिए संसार का जब प्रलय होता है उसके लिए अलग काल है, मनुष्य के शरीर के लिए अलग काल है और विश्व शरीर के लिए अलग काल है। तो वृद्धि विकास तथा परिणाम कर्म ये सभी काल पर आश्रित है। हर एक वस्तु काल के ऊपर आश्रित है तो विदुर जी विभिन्न भौतिक प्राकृतियों तथा उनके विलीन होने के कालों के विषय में विस्तार से जानना चाहते थे। तो किस तरह से काल समस्त जीवों को विलीन कर देता है और किस तरह से जीवों की उत्पत्ति इस काल के अनुसार होती है उसके विषय में विदुर जी ने प्रश्न किया है और मैत्रेय जी कल से विस्तार से उत्तर देंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।